आकांक्षा ने जल्दी से आकर संजय का हाथ पकड़ लिया ताकि वो उसकी स्मृतियों के जरिए उसके अतीत में झांक सके। सन 1835। बिलासपुर रियासत में जश्न मनाने की तैयारी की जा रही थी क्योंकि राजकुमार रिवांश, जो कि उस रियासत के इकलौते उत्तराधिकारी थे, उनकी शादी जयप्रताप सिंह जी के दोस्त राघवेंद्र प्रताप सिंह की बेटी सुनैना के साथ तय की गई थी। रिवांश उस वक्त 10 साल के थे और सुनैना 7 साल की। दोनों बच्चे कुछ अन्य बच्चों के साथ, जिनमें रवि, रघु, संजय और विजय भी शामिल थे, उनके साथ खेलने के लिए महल के बाहरी हिस्से में बनी झील के किनारे पर गए थे। काफी देर खेलने के बाद दोनों पास मौजूद एक कृत्रिम झील के पास आकर बैठ गए। देखिए राजकुमारी, वो हंस कैसे तैर रहे हैं। आपको तैरना आता है क्या? आप भी उनकी तरह तैरिए ना, वरना हम आपसे शादी नहीं करेंगे, रिवांश ने अपने बचपने में जिद की। लेकिन हमें तैरना नहीं आता है, सुनैना ने मासूमियत से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर रिवांश गुस्सा हो गया। वो उस पर जोर से चिल्लाया, नहीं, आपको तैरना पड़ेगा। सुनैना कुछ बोलती उससे पहले ही बचपने में रिवांश ने उसे नदी में धक्का दे दिया। उसे पानी में देखकर वहां मौजूद बच्चे तालियां बजाते हुए जोर जोर से हंसने लगे। राजकुमारी तैर रही है। उन लोगों की आंखों के सामने सुनैना की जान चली गई। जहां एक तरफ जश्न का माहौल था, वहीं अब राघवेंद्र प्रताप सिंह के लोग रिवांश की जान के दुश्मन बन चुके थे। जयप्रताप सिंह उनसे बचाने के लिए 5 साल तक रिवांश को अपने किसी दूसरे दोस्त के यहाँ छुपा कर रखा। जब रिवांश बड़ा हुआ तो उन्होंने उसे विदेश में पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। वक्त के साथ लोगों के दिलो दिमाग से इस हादसे की याद फीकी पड़ने लगी, तो राजा साहब ने रिवांश को फिर से रियासत बुलाने का सोचा। उस दिन का सच जानकर रिवांश ने भारी मन से कहा, लेकिन वो सब हमसे अनजाने में हुआ था। एक अनजाने में हुई गलती की हमें इतनी बड़ी सजा कैसे मिल सकती है? हमने जानबूझकर सुनैना की जान नहीं ली थी, हम बच्चे थे, रिवांश पश्चाप की अग्नि में झुलस रहा था। विजय, संजय, रवि और रघु ने देखा कि रिवांश अपने पश्चाप की आग में जल रहा था कि तभी मौके का फायदा उठाकर रवि और रघु ने वो पिंजरा उठाकर रिवांश पर डाल दिया। रिवांश अब पिंजरे में कैद घायल शेर की तरह तड़प रहा था। आकांक्षा उसे बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ी। उसने उस पिंजरे को खोलने के लिए उसे छुआ तो एक बिजली से भी तेज झटका उसे लगा और वहीं घायल होकर गिर गई। उसे उस हालत में देख वो चारों शैतानी हंसी हंस रहे थे। वो चारों बाहर उसे कैद करके फिर से उसी कुटिलता पर उतर आए थे जो उन्होंने आज से इतने साल पहले की थी। बाहर निकालो हमें, रिवांश दर्द से चिल्लाया। रवि, रघु, जल्द से जल्द तंत्र साधना की तैयारी करो। इससे पहले कि धरती पर सूर्योदय हो, हमें युवराज की बलि देकर इसे शैतान को अर्पित करना होगा। संजय के कहते ही वो तीनों तंत्र साधना के सामान जुटाने पड़े ही थे कि रिवांश के चिल्लाने सुनकर जंगल के सारे पिशाच उस तरफ इकट्ठा होने लगे। उन्हें इस तरफ आता देख वो चारों घबरा गए। विजय, जल्दी कुछ करो, इतने सारे पिशाचों से हम चारों नहीं निपट पाएंगे। इससे पहले कि ये सब हमारी तरफ बढ़ें और हमें खत्म कर दें, हमें उन्हें कैद करना होगा, संजय जोर से चिल्लाया। लेकिन हमारे पास बस एक ही पिंजरा मौजूद है जिसमें रिवांश कैद है। इस छोटे से पिंजरे में हम इतने सारे पिशाचों को कैसे कैद करेंगे, विजय ने जवाब दिया। कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो, ये कोई आम पिंजरा नहीं बल्कि एक जादुई पिंजरा है। हम इसमें एक साथ पूरी दुनिया को कैद कर सकते हैं, फिर ये तो चंद पिशाच हैं, रवि ने कहा। बेवकूफ तो तुम हो गए हो, अगर इन लोगों को कैद किया तो हमें रिवांश को आज़ाद करना होगा। अगर उसे आज़ाद कर दिया तो हमें साधना को कभी संपन्न नहीं जप पाएंगे, रघु ने गुस्से में जवाब दिया। बातचीत में समय व्यर्थ मत करो, युवराज को काबू करने में ये लड़की हमारी मदद करेगी। बिना उन तीनों के जवाब का इंतजार किए संजय ने पिंजरा रिवांश से हटाकर सभी पिशाचों के ऊपर फेंक दिया। युवराज, हमारी रक्षा कीजिए, बाहर निकालिए हमें, सारे पिशाच एक सुर में तड़पाई स्वर में बोलने लगे। जंगल के बाकी पिशाच ज्यादा शक्तिशाली ना होने की वजह से उस पिंजरे में आते ही बहुत कमजोर पड़ने लगे थे। दूसरी तरफ अब रिवांश आजाद तो था, लेकिन पिंजरे की शक्तियों ने उसे कमजोर बना दिया था। वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। वहीं उसके पास घायल अवस्था में आकांक्षा पड़ी थी। उठिए शहजादी, आज हमें आपकी जरूरत है, रिवांश ने थके स्वर में कहा। आकांक्षा अपना पूरा जोर लगाकर उनकी कोशिश कर रही थी। उन चारों ने अपनी तंत्र साधना शुरू कर दी थी, इस वजह से रिवांश और भी कमजोर पड़ने लगा था। कांगड़ा के मंदिर में इतने सारे विघ्नों के बावजूद राजपुरोहित जी ने अपनी पूजा बंद नहीं की थी। सुरक्षा घेरे के बाहर पूरा स्थान शैतानी शक्तियों ने उजाड़ दिया था। सुबह के 4 बज रहे थे और उस पहर में वो दिव्य शस्त्र जागृत होकर अग्नि में से बाहर निकला। वो एक छोटी तलवार नुमा आकृति में था जो कि चांदी से बना होने के कारण बर्फ की भांति सफेद था। जागृत शस्त्र को देखकर सबने उसे प्रणाम किया और इसी के साथ वो उनकी आंखों के सामने से उड़कर अगले ही पल जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल में रिवांश जमीन पर छटपटा रहा था। वो खुद को बहुत शक्तिविहीन और कमजोर महसूस कर रहा था। आकांक्षा, प्लीज खुद को पहचाइए, आप एक आम इंसान नहीं है। अगर आप होती तो ये लोग आपको मारने में एक पल का समय भी व्यर्थ नहीं गवाते। खुद की शक्तियों को महसूस कीजिए जो कुदरत ने किसी विशेष कार्य के लिए आपको दी है। जमीन पर पड़ा रिवांश आकांक्षा की हिम्मत बढ़ा रहा था। अब वही उसका एकमात्र सहारा थी जो उसे और इस जंगल को उन चारों के बुरे इरादों से बचा सकती थी। लेकिन मैं तो सिर्फ का पास्ट ही देख सकती हूँ, फिर मैं इन शक्तिशाली पिशाचों से कैसे निपटूंगी? तुमने तो खुद देखा होगा, जब मैं तुम्हें बचाने के लिए उस पिंजरे के पास आई तो एक ही झटके में उससे दूर हो गई, उसको छू तक नहीं सकी थी मैं। ऐसे में मैं कैसे तुम लोगों की मदद करूं? आकांक्षा ने उदास होकर कहा। रिवांश ने आकांक्षा का हाथ पकड़ा, मानो वो उसमें किसी तरह की ऊर्जा का संचारण करना चाह रहा हो। लेकिन उसके हाथ पकड़ते ही रिवांश खुद को फिर शक्तिशाली महसूस कर रहा था, जैसे कि दोनों की शक्तियां मिल गई हों। एक ही झटके के साथ उसका हाथ पकड़े हुए रिवांश वहां से खड़ा हुआ और अपना विशाल स्वरूप धारण करने लगा। वो चारों अपनी पूजा में मग्न थे, जो कि बस थोड़ी ही बची थी। जैसे वो चारों अंतिम आहुति के लिए खड़े हुए, रिवांश ने संजय को हवा में उठा लिया। उसके उठते ही उनकी साधना खंडित हो चुकी थी। गुस्से में रघु आकांक्षा की तरफ वार करने बढ़ा तो शक्तियों ने उसके आसपास एक सुरक्षा घेरा बना लिया, जिसे पार करना संजय के लिए मुश्किल था। सही कहा था तुमने रिवांश, ये मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, आकांक्षा चिल्लाई, ताकि उसकी आवाज रिवांश के कानों में पड़ सके, जो कि उस वक्त अपना विशाल स्वरूप धारण किया हुआ था। तुम्हें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसे तो अभी भी मार सकते हैं। रवि ने पास स्थित पेड़ को उखाड़कर रिवांश पर वार किया। हैप्पी के बात करते ही उसके बाकी के तीन साथी भी रिवांश पर वार करने लगे। आकांक्षा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी कि तभी उसकी नजर जंगल को चीरते हुए आ रहे दिव्य शस्त्र पर पड़ी। कांक्षा ने अपना हाथ ऊपर किया कि वो सबसे सीधा उसके हाथ में जाकर चुका। इसका क्या करूं, अब अचानक से ई कहां से आ गया? जो भी हो, इनसे निपटने में कुछ तो मदद करेगा। शस्त्र की शक्तियों से अनभिज्ञ आकांक्षा ने बिना सोचे समझे शस्त्र से रघु के हाथ पर वार किया। एक छोटे से वार से ही रघु का हाथ कटकर दूसरी तरफ जा गिरा, जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। उस दृश्य को देखकर रिवांश को उस शस्त्र की शक्तियां पहचानते देर नहीं लगी।
आकांक्षा, ये कोई आम शस्त्र नहीं है, इस शस्त्र से इनके सिर के बीचों बीच वार कीजिए। रिवांश के चिल्लाते ही रघु को वहीं छोड़ वो तीनों पिशाच अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे, लेकिन रिवांश ने उन्हें वहीं दबोच लिया और आकांक्षा ने उनके कहे अनुसार उस शस्त्र से उन चारों के सिर बीचों बीच वार किया। वो चारों वहीं घायल होकर गिरने लगे। लगता है ये अभी मरने वाले हैं, आकांक्षा के चेहरे पर जीत के भाव थे। नहीं, इस शस्त्र से भले ही ये घायल हो गए हों, लेकिन मरे नहीं हैं, रिवांश ने आंख बंद करके कुछ देखा और फिर धीरे से आंखें खोलकर बोला। जंगल के बाहर सूरज की किरणें दस्तक दे चुकी हैं, अब उसी की दिव्य रोशनी में इनका अंत होगा, कहकर रिवांश ने एक एक करके उन चारों को जंगल के बाहर फेंक दिया। सूरज की रोशनी में वो सभी जलकर राख में बदल गए। उनके मरते ही पिंजरे में कैद सभी पिशाचों की राख जंगल में उड़ने लगी। ये कैसे? आकांक्षा ने हैरानी से पूछा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सब उन्हीं के गुलाम थे और उन्हीं के अंश से पिशाच बने थे। उनके खत्म होते ही इनका अस्तित्व स्वतः ही मिट गया, रिवांश ने जवाब दिया। देखा जाए तो एक तरह से सब अच्छा ही हुआ जो इन्हें मुक्ति मिल गई। हम बचे हैं आकांक्षा, हम पर भी वार कीजिए और हमें इस जीवन से मुक्ति दीजिए। रिवांश के मुंह से उसे मारने की बात सुनकर आकांक्षा की आंखें नम हो गई। वो वहीं पत्थर बनी खड़ी थी, जबकि रिवांश के हाथों से वक्त रेत की तरह फिसला जा रहा था। वार कीजिए शहजादी, रिवांश ने आकांक्षा का हाथ पकड़कर बोला। उसने रिवांश का हाथ झटका और सख्त आवाज में कहा, नहीं। कांगड़ा के मंदिर में पूजा में राजपुरोहित जी को मौसम के शांत होने के साथ ही आभास हो गया कि बुराई का अंत हो चुका है। राजपुरोहित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, देवी माँ सबकी रक्षा करें। बेफिक्र हो जाइए श्रीमान, आपकी पोथी सुरक्षित है। राजपुरोहित जी के मुंह से आकांक्षा के ठीक होने की बात सुनकर राजवीर जी और आकांक्षा ने राहत की सांस ली। जानवी ने खुश होकर बोला, चलो अच्छा हुआ कि अक्षु ठीक है, अब आने दो उसे, मैं बताती हूँ। अकेले अकेले जंगल चली गई। ठीक है जानवी, अक्षु आएगी तो उसे बोलूंगा कि अगली बार तुझे भी साथ लेकर जाए, राजवीर जी ने हंसते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं जाने वाली किसी जंगल में, जानवी ने मुंह बनाकर कहा। राजवीर जी ने धन्यवाद स्वरूप राजपुरोहित जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा पड़ जाएगा, मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा राजपुरोहित जी। एहसान तो आपकी पोती ने किया है इस धरती को पाप मुक्त करके, उसे यहाँ हमारे पास जरूर लेकर आइएगा, माता रानी सदैव उसकी रक्षा करें। अब आपको घर जाना चाहिए, वो आपकी राह देख रही होगी। राजपुरोहित जी को प्रणाम करके राजवीर जी जानवी के साथ शिमला के लिए निकल पड़े। जंगल में रिवांश आकांक्षा के मुंह से उसे ना मारने का सुनकर हैरान खड़ा था। वार कीजिए शहजादी, रिवांश ने एक बार फिर कहा। मैं तुम पर कभी वार नहीं कर सकती रिवांश। लेकिन क्यों, बस हम ही बचे हैं यहाँ और हमें मुक्ति चाहिए शहजादी, प्लीज वार कीजिए। तुमने ही तो कहा था कि मुझसे मिलने के बाद तुम्हारा जीने का मन करता है, तो क्या तुम्हें देखकर जीने का मेरा मन नहीं कर सकता, आकांक्षा भावुक होकर बोली। पागल मत बनिए, हम आपकी तरह इंसान नहीं है, हमारा अंत जरूरी है आकांक्षा, हम आपसे कह रहे हैं आप वार कीजिए, हम दोनों का कोई भविष्य नहीं है, हम एक हैवान है और एक एंजल, भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत कीजिए। सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मार सकती, आकांक्षा ने दिव्य शस्त्र छुपाते हुए कहा। आई लव यू, फिर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक डेविल हो। नहीं आकांक्षा, आप हमसे प्यार कैसे कर सकती हैं, आप तो हमारी सच्चाई जानती हैं, फिर आप हमसे प्यार कैसे, रिवांश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यही सच है रिवांश, और तुम कोई हैवान नहीं हो। तुम्हारा साफ दिल मैंने खुद महसूस किया है। आकांक्षा शस्त्र नीचे फेंक कर रिवांश के गले लग गई। एक बार फिर सोच लीजिए, हमारे साथ आपका जीवन आसान नहीं होगा। अब तो सोच लिया मिस्टर डेविल, तो क्या आप इस डेविल की एंजल बनने के लिए तैयार हैं? रिवांश ने पूछा तो आकांक्षा ने उसकी बाहों में छुपकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुम कभी किसी की जान नहीं लोगे, प्रॉमिस करो। जैसा आप कहें शहजादी, रिवांश ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। हम वादा करते हैं कि हम किसी भी जीवित प्राणी का खून नहीं पिएंगे, और ये एक डेविल का अपनी एंजल से वादा है। हेलो रीडर्स, यहाँ पर कहानी का पहला चैप्टर खत्म होता है, जहाँ आकांक्षा का एक डेविल की एंजल बनकर रहना कौन सी नई मुसीबतें खड़ी करता है, जानने के लिए बने रहिए। और प्लीज, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो उस पर लाइक और कमेंट जरूर करें। एक राइटर को अपनी मेहनत थोड़ी तारीफ तो चाहिए ही होती है। आगे भी ये साथ यूं ही बनाए रखिए। आपके प्यार और साथ के लिए शुक्रिया।